नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है मेरी छोटी सी कहानी खून दो।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
मिल्की सिंह, ये उनका असली नाम नहीं है, लेकिन उनको यही नाम पसंद है क्योंकि माता पिता द्वारा दिया गया नाम उनके पिछड़ेपन का प्रतीक है। उनका असली नाम यानी दूधनाथ सिंह उनकी एक आधुनिक अधिकारी वाली छवि से कहीं भी मेल नहीं खाता। कुमारी चाको ने पहली बार उन्हें इस विसंगति का एहसास दिलाया और उनका नया नामकरण कर दिया, और तभी से कुछ ऐसा हुआ कि लोग उनका वास्तविक नाम भूल ही गए। मिल्की सिंह का व्यवहार मेरे प्रति काफी रूखा और कड़क है, मगर मैं ये जानता हूँ कि उनका जंगलीपन एक कड़े नारियल की तरह ऊपरी और दिखावटी है। ऊपर से वे भले ही मिल्की सिंह हो जाएं, लेकिन अंदर से तो आज भी दूधनाथ सिंह ही हैं, दूधिया गरी जैसे नरम। दूसरों की सहायता का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब उनकी रग रग में बह रही इस भलमनसाहत को मैं नहीं पहचानूंगा तो और कौन समझेगा। न सिर्फ वे मेरे साथ काम करते हैं, दुर्भाग्य से मेरे बॉस भी हैं, इसलिए अक्सर उनकी महानता और दयालुता के किस्से मैं इतनी बार सुनता रहा हूं कि मेरे कान पक गए हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सिंह साहब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने एक कमजोर बूढ़े आदमी को चीथड़ों में लिपटे हुए देखा। कितने लोग वहां से निकले जा रहे थे, लेकिन ये हमारे मिल्की सिंह ही थे जिन्हें उस बूढ़े पे दया आई। इन्होंने पास के ठेले वाले को 1 रुपया देके उस गरीब को चाय के एक कुल्हड़ की बदौलत ठंड में जमने से बचा लिया। इस बात को बीते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन मुझे तो आज भी गाहे बगाहे ये गाथा सुननी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम आप लोग जैसे सामान्य लोगों की तरह उनकी दयालुता का घेरा सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित हो। मिल्की सिंह आला दर्जे के पशु प्रेमी हैं। एक बार उनके बच्चे ने कत्लगाहों में चल रहे पशु अत्याचारों के बारे में बनी हुई कोई वीडियो क्लिप इंटरनेट से उतार ली। अब उसे देखने के बाद दयालु मिल्की सिंह ने 1 हफ्ते तक मटन नहीं खाया, सिर्फ चिकन पर जिंदा रहे। यही किस्से बार बार सुनने पर मेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं उनसे कभी पूछ नहीं सकता क्योंकि बॉस हमेशा सही होता है। वैसे तो मेरा बॉस होने के नाते मिल्की सिंह जी सर्वज्ञानी भी हैं, फिर भी एक बात मिल्की सिंह को कभी समझ में नहीं आती। दफ्तर में उनके नहीं बल्कि रेड्डी साहब की दयालुता के किस्सों की चर्चा होती है। आज तो मिल्की सिंह कुछ ज्यादा ही अनमने हैं, होना भी चाहिए। सारे कर्मचारी पैसे और कपड़े इकट्ठे करके रेड्डी साहब को दे रहे हैं जिन्होंने ये सब उड़ीसा के चक्रवात पीड़ितों तक पहुंचाने का प्रबंध किया है। मिल्की सिंह के दिमाग में भी एक चक्रवात घूम रहा है। वे भी रेड्डी साहब की तरह कुछ बड़ा नाम करना चाहते हैं, काम नहीं। हर सफल बॉस की तरह मिल्की सिंह भी जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक असफल पर बुद्धिमान मातहत से कुछ सूत्र लेने पड़ेंगे। निश्चित है मेरे पास ही आएंगे। मैं सफल हूं, अक्लमंद हूं, पैसे और बचत के महत्व को समझता हूं। वो मेरे इतना पास आकर बोले कि चाय सड़ने की महक ने मुझे अंदर तक चीर दिया। लेकिन क्या करूं, हैं तो बॉस। ऐसा क्या करूं कि दान भी हो जाए और अंटी भी ढीली ना हो, उन्होंने सकुचाते हुए फुसफुसाया। पैसे दिए बगैर, मैंने अपने आप से पूछा और त्वरित विचार के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाईं। खिड़की के बाहर दीवार पर कुछ दीवाने नौजवानों का लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस का नारा दिखाई दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हम अपने खून से आसमान पे क्रांति लिख देंगे। क्या बकते हो, मैं कोई पागल हत्यारा हूं क्या, मिल्की सिंह बौखलाए हुए से बोले। अरे रक्तदान सर, मैंने उछलते हुए कहा, कहावत भी तो है, खून का खून पानी का पानी। मेरा इतना कहना था कि पड़ोस से मिसेस खान आकर मेरे और मिल्की सिंह के बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो गई। अरे खून देना बहुत खतरनाक होता है, मेरे खाविंद ने एक दफा अपने अब्बू को दिया, बेहोश हो गए। उनके भाई ने तो खून दिया भी नहीं, वो तो बस उनको देखने भर से ही बेहोश हो गए। उन्हें ठीक होने में 2 हफ्ते और कई किलो कीमा लगा। मिसेस खान की बात सुनते ही मिल्की सिंह बिदकने के बजाय उछल पड़े। अरे मुझे बेहोश होने का खतरा नहीं है, मैं तो खूब कीमा खाता हूं। उनके निर्देश पर मैंने रक्त बैंक से उनके लिए अगले दिन का समय ले लिया, और अगले दिन वे खूब सारा कीमा डकार कर निर्धारित समय से पहले ही ब्लड बैंक पहुंच गए। सामान्य जांच पड़ताल और कागजी कार्रवाई के बाद जब नर्स ने उनसे पूछा, आप रेडी हैं क्या? नहीं जी नहीं, मैं सिंह हूं, मैं रेडी क्यों होने लगा? मिल्की ने सफाई देते हुए कहा, रेडी तो मेरा सहकर्मी है। हाँ, हमारी शक्ल काफी मिलती है, लोगों को अक्सर शक हो जाता है। कागजी कार्यवाही के बाद उन्हें एक मेज पर लिटा दिया गया। जब नर्स ने उनकी बाह में एक बड़ा सा सूजा भोंका, तब उन्हें अपने ठगे जाने का एहसास हुआ। लेकिन अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, उनकी बाह में इतनी जलन हुई कि वे तकलीफ से चिल्ला ही पड़ते। लेकिन पड़ोस में एक 60 वर्षीय महिला को आराम से खून देते हुए देखकर उनकी चीख त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटक गई। मौका और हालात की नजाकत को देखते हुए उन्होंने होठ सी लेने में और अश्क पी लेने में भलाई समझी। पूरी प्रक्रिया में काफी देर लग रही थी। मिल्की सिंह के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। न जाने उनका खून किसके काम आएगा। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे एक व्यक्ति की जान बचा रहे थे या ज्यादा लोगों की। हो सकता है कि उनका खून रणभूमि में घायल सिपाहियों के लिए ले जाया जाए और सिर्फ उनके खून की वजह से एक वीर सैनिक की जान बच जाए और वो वीर युद्ध की बाजी पलट दे। इतना सोचकर मिल्की सिंह को अपने ऊपर बड़ा गर्व हुआ। वे अब तक अपने अंदर छिपे हुए युद्धवीर को पहचान चुके थे। उन्होंने तो अपनी कल्पना में इतनी देर में राष्ट्रपति के हाथ परमवीर चक्र भी ले लिया था। बहादुरी के सपनों के बीच बीच में उन्हें बुरे बुरे ख्यालात भी आ रहे थे। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके शरीर से इतना ज्यादा खून क्यों निकाला जा रहा था। पड़ोस की बूढ़ी महिला तो जा भी चुकी थी। क्या उनसे इतना ज्यादा खून इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वे वीरों के दस्ते में से हैं? तभी नर्स मुस्कुराती हुई उनके पास आई और पूछा, आप ठीक तो हैं रिलैक्सिंग? माफ कीजिए, मैं मिल्की सिंह हूं। रिलैक्सिंग तो मेरा छोटा भाई है। मिल्की ने पहले तो नर्स का भूल सुधार किया, फिर अपनी दुखती रग पर हाथ रखकर झल्लाते हुए पूछा, और कितनी देर लगेगी? हाथ जला जा रहा है। अरे बस हो गया, नर्स ने उसी मधुर मुस्कान के साथ कहा और अपने नाजुक हाथों से सुई निकालकर घाव को रुई से दबा दिया। मिल्की सिंह के होठ सूख रहे थे। नर्स का हाथ हटते ही वे जल्दी से कूदे और पास ही पड़ी उस मेज की ओर लपके जिस पर फलों के रस से भरी हुई बोतलें रखी थी। खड़े होते ही उन्हें भयानक चक्कर आया और मेज तक पहुंचने से पहले ही वे धराशायी हो गए। आगे की कोई भी बात उन्हें याद नहीं है। जब होश आया तो वे डॉक्टरों और नर्सों से घिरे एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। माथे और गर्दन पर बर्फ की पट्टियां लगी हुई थीं और हाथ में एक सुई चुभी थी। ये क्या, आप लोगों ने पहले से इतना खून निकाल लिया कि मैं गिर गया, और अब फिर क्यों? उन्होंने गुस्से से पूछा। जवाब उसी सुस्मिता ने दिया, अभी तो आपको खून चढ़ाया जा रहा है ताकि आप बिना गिरे अपने घर जा सकें। अगर उस दिन मिल्की सिंह की कार हमारा चालक सुनील नहीं चला रहा होता तो मुझे ये बात कभी पता नहीं चलती। श्रीमती खान उनके घर ठीक हो जाएं कार्ड के साथ फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंची। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वे 5 किलो कीमा लेकर गई थी। उस दिन के बाद जब मिल्की ने दफ्तर में वापस कदम रखा तो वे पूरी तरह से बदले हुए थे। अगले हफ्ते की कर्मचारी सभा में न सिर्फ उन्होंने रेड्डी साहब की जनसेवा को मुक्त कंठ से सराहा, बल्कि उनके लिए एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार भी स्वीकृत किया। धन्यवाद।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।